Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2342-1050 and 2331-4444. Once again, 2342-1050 and 2331-4444. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
Dhanyavad. Namaskar. Market Mantra ke taza ank ke saath hum ek baar phir hazir hain. Aur aap sabhi shrotaon ka bahut bahut swagat hai. कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। जैसे कि आज शनिवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक या कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड लगाना ना भूलें 011। चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
वार्म वेलकम शिशिर।
थैंक यू।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख।
इंडस्ट्रीज ब्रेक 2 week आउट परफॉर्मेंस एंड एंड्स लोअर। ड्यूरिंग द वीक सेंसेक्स डिक्लाइंड 1,276 पॉइंट्स। Nifty 50 shed 1.4%. In the US market, tech sector gives it the biggest boost on Friday. For the week, S&P 500 was down 0.05%, Dow slipped 0.6%, and Nasdaq declined 0.2%. And oil prices settle higher on Friday, notches over 3.5%. In weekly gains, Brent gains more than 3.5% in the week.
घरेलू सूचकांकों ने दो सप्ताह के प्रदर्शन को तोड़ा और निचले स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 1,276 अंक टूटा, निफ्टी 1.4% नीचे। अमरीकी बाजार में टेक सेक्टर ने शुक्रवार को सबसे ज्यादा बढ़त दी। साप्ताहिक स्तर पर एसएनपी 500 0.05% नीचे, डाउ 0.6% फिसला और नेस्डैक 0.2% गिरा। और कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को उछाल देखने को मिला। सप्ताह में ब्रेंट कच्चे तेल में 3.5% से अधिक की वृद्धि। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं साप्ताहिक शेयर बाजार पर। मिले जुले तिमाही आय के आंकड़े, आरबीआई नीति के परिणाम, अमेरिका में मंदी का डर और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण ये सप्ताह बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। दो सप्ताह के प्रदर्शन को व्यापक सूचकांकों ने तोड़ा और मुख्य सूचकांकों के अनुरूप निचले स्तर पर बंद हुए। बीते सप्ताह में बीएसई का स्मॉल कैप सूचकांक 2% नीचे रहा, लार्ज कैप 1.5% कमजोर दिखा और मिड कैप 1% के नुकसान में रहा। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1,276 अंक यानी 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 50 भी 350 अंक यानी 1.4% के नुकसान में दिखा।
We have a first caller online with us, Dr. Bisht from Delhi. A warm welcome, Dr. Bisht. Please go ahead and ask your question.
Hello, good evening, everyone.
Good evening.
This is Dr. Prafullit Bisht from Delhi. Sir, I have a question. Like, I used to invest during the lockdown time, but I want to restart the investment. So, what according to you, first is it the right time to get in the market? Because I keep reading about that, you know, it's very volatile. It's the bubble also. So it might, you know, burst someday, the investment thing. Is it the right time? And if so, what should be the main areas that I should be focusing on, mid cap or large cap? Because I am literally new to all these things. I keep hearing and reading about it in newspapers, but how should I go about it? Thank you.
And Dr. Best, what's your age?
I think we have lost touch with him.
Okay. So,
from the sound of it, very young.
It seems to be. So, when he's talking about entering in the stock market, I believe that considering the volatility in the stock market, this is not a good time for the entry for the first time. He may go or he may use mutual fund route, which is the SIP route. It would be much better because we are seeing all of a sudden the market is going, say, 1,000 point up and then again we are seeing 1,000 point down. So, for a first timer, that's not a good time. Now, what he can do, that he can make a very small allocation. He can start with a SIP in the stock market, not in the mutual fund. SIP in the stock market means that you can make a small chunk of your available resources. Say, suppose that you have 100 rupees, you can use 20 rupees or 30 rupees in the mutual fund, and then you can use 10 rupees in the stock market buying any large cap. I mean, for the first timer, I believe that the mid cap and the small cap is not a good idea. They should go for the large cap, buy in the small chunk, and then build the portfolio. Rather than putting all the money in, say, in a particular category of share, whether it is a small cap, mid cap, or large cap, is not a good idea. So my advice would be to distribute the money, a part in the mutual fund through the SIP route, part in the stock market, and mainly in the large cap. That would be the better for Dr. Best.
So historically, Shishir, periods of volatility have provided opportunities for investors to realign their asset allocation, not to enter the during
exactly,
volatility,
exactly.
Is what you're saying.
Yes. I mean, this is the time when you have to think that if you have some investment, I believe that he talked about that he made some investment during the COVID period. So if we had some investment, it's a good time to go for profit booking. But again, the profit booking should be the installment, not in just one go. I mean, selling the entire thing in just one go is not a good idea. So if you can book profit and as you rightly mentioned, that realignment of asset. I mean, if you are going for, say, a particular sector, then you can go for the another sector. Like this time, infrastructure, the capital goods sectors are doing well and the investment by the government is very high. So these are the some of the sectors where you can reallocate from, say, any particular sector where you have put up the money.
और चलते हैं अगले कॉलर के पास. मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं गिरधारी लाल. गिरधारी लाल जी, आपका शो में स्वागत है, सवाल पूछिए.
सर जी नमस्कार. जी
नमस्कार.
सर जी मेरा सवाल है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है.
जी बताइए.
सर जी मैंने एक मुंबई में एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन जिसने मेरे को फ्लैट भेजा है उसने लीव एंड लाइसेंस नाम बनाकर मेरे को गिफ्ट डीड बनाकर दिए है.
ओके.
तो मतलब क्या अभी मेरे को मतलब ऐसा उसने गिफ्ट डीड ऐसे दिया कि भाई मैंने इसको गिफ्ट दिया लेकिन तो जो सेल परचेज का डीड उसमें इसको दिया नहीं है, तो मतलब इसके बारे में मेरे को प्लीज जरा बताइए.
देखिए गिरधारी लाल जी, आयकर विभाग ये देखता है कि आपके खून के संबंध जिनके साथ है आप उन्हीं को उपहार दे सकते हैं, उनसे आप उपहार ले सकते हैं. कोई भी व्यक्ति आपको अगर आकर के उपहार देता है गिफ्ट डीड के जरिए और आयकर विभाग से ये साबित हो जाता है, आयकर विभाग को ये पता चल जाता है कि उसमें आपके और उनके बीच में कोई खून का संबंध नहीं है, तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं. तो बेहतर ये है कि आप प्रॉपर वे में जो खरीद बिक्री का जो दस्तावेज होता है, जिसको हम लोग सेल्स एग्रीमेंट या फिर आप जिसको प्रॉपर रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के बाई और सेल का करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है. प्रॉपर पहले आप सेल एग्रीमेंट करा लें और फिर जाकर के आप प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट करें, उसको पूरा करें. उपहार किसी से भी लेना हो ये ध्यान रखिए, खून का रिश्ता बहुत जरूरी है.
फ्रॉम कोलकाता वी आर जॉइंड इन बाय हरी चैटर्जी. अ वार्म वेलकम हरी.
हेलो सर जी. नमस्ते सर जी.
नमस्ते. अपना सवाल पूछे.
सर जी मेरा सवाल है, एक ही सवाल. मेरा सवाल सर जी, मैं एक SIP कर रहा हूँ कंज्यूमर में, ठीक है. कंज्यूमर फंड क्या ठीक है?
जी आगे बोलिए.
थैंक यू.
बस वही है कि मैं SIP कर रहा हूँ
कंज्यूमर फंड्स में.
तो मेरे हिसाब से आप SIP जारी रखें और
बेसिकली SIP इज इट गुड टू कंटिन्यू फॉर हिम और फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर बिकॉज दैट्स व्हाट यू सेड अ व्हाइल बैक.
सो SIP इज अ गुड आइडिया कीपिंग दैट इन माइंड दैट देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू एवरेज द वैल्यू ऑफ योर एलोकेशन. व्हेन द मार्केट इज अप द प्राइसेज ऑफ योर असेट विल गो अप. व्हेन द मार्केट इज डाउन there is a possibility of entering into the market or buying, getting the units at a lower price. So I think SIP is for any retail investor, for any individual investor is always a good idea.
और साथ ही में उन्होंने कहा जैसे कंज्यूमर फंड्स में SIP कर रहे हैं, क्या एक ही सेक्टर में जाना?
नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो हमेशा से हम कहते हैं कि एक टोकरी में सारे अंडे ना रखें. तो जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपके लिए परेशानी ये हो सकती है कि उस सेक्टर में या उस क्षेत्र में जिसको कहें अचानक से मांग कम हो गई. जैसे अभी के समय में एक आशंका ये भी जताई जाती है कि क्या उपभोक्ताओं की मांग उसी तरीके की बनी हुई है. अगर उसमें कमी आ गई और आपका सारा पैसा सिर्फ एक ही तरह के सेक्टर के फंड में लगा हुआ है वो उचित नहीं है. तो आप अगर SIP गढ़ना चाहते हैं, आपके पास मान लीजिए कि 2,000-5,000 रुपए हैं, तो आप उसको चार में बांट लीजिए क्योंकि 500-500 रुपए का आप SIP कर सकते हैं. और अब तो बात यह भी हो रही है कि 100 रुपए का भी SIP कर लीजिए. तो ऐसे में आपके पास विकल्प बहुत हैं, एक जगह पे सारे पैसे ना लगाए.
ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द वीकली स्टॉक्स. इनफैक्ट स्पर्श रेड दैट आउट फॉर यू. ही इलस्ट्रेटेड दैट हाईली volatile week was observed by us. We had mixed quarterly earnings, we had RBI policy outcome, we had the fear of US recession which kind of jolted each one of us, and the geopolitical escalations continue to happen even today. You know, we had the news. So in such a scenario, what's your take on the valuations of the equities?
Rajesh, you are forgetting Bank of Japan.
That was the trigger.
I mean, after a good number of years, they revised their interest rate. And the most important thing was the carry trade. Carry trade means you are taking money at a lower cost and putting in a very high, market where the return is very attractive. But when the particular bank or the particular country raised the interest rate, then the cost of fund will be higher for you and then you will have to settle your trade, and that is what we call as the carry trade. So Bank of Japan was the real trigger, and then the second trigger was the Federal Reserve commentary. Federal Reserve commentary was all about what? That there were two trends. One, there is a apprehension of some recession, and then they are also talking about cutting the interest rate in say month of September. And we all know that inflation in US is still high. So when you are cutting the interest rate, that would be a good news for India, of course, because the interest rate is low, then the people will come to this India. Country. That's a very good sign for that. But the problem is that when the country is facing a problem, that how they are going to make a balance between growth possibility, inflation and the interest rate. And that is the fear which is affecting entire global market, not just India. So we had Bank of Japan, then we had some action by Bank of England, then we had some action by the Central Bank of Canada, and then finally RBI didn't do anything. So people were expecting that RBI may give some indication, but the problem is that food inflation is very high and they have expressed their concern on that.
So we'll talk about inflation after we have taken our next caller. N.R. Prasad from Bengaluru is with us. A warm welcome, Mr. Prasad.
Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore.
Good evening.
Good evening, Mr. Rajesh. Good evening, Sparsh.
Good evening.
Mr. Shishir Sinha, two questions.
Yeah.
Is it worth investing in two sectors? I was just looking into the agro sector or agriculture sector and the shipping. Is it worth considering the market situation? Is it worth in these two sectors? My second question is, I just want clarity on the indexation which is introduced. In fact, it was modified on the 7th of August for the properties bought before 7th of August and before the 23rd of July and after the 23rd of July. There are two types of indexation have been introduced.
Okay.
So just want the clarity on this, how the LTCG is applicable for these two dates.
Okay.
Thank you. These are my two questions.
Mr. Prasad, for your first question, I believe that the shipping is a better option. The kind of various reforms which the Indian government has taken, and we are seeing some kind of improvement in the logistic scenario. So shipping would be better. Agro, I think you need to wait for that, because the condition in agriculture is not so good, and considering the uneven monsoon, we are not having a good time for the agriculture. So out of these two, my advice would be the shipping one. Now coming to your second part, which is the LTCG on the property sale. See what happened on 23rd July when the finance minister announced the budget. She said that the rate of LTCG will be 12.5% but without indexation. Earlier it was 20% with indexation. Now we need to remember that indexation, the concept of indexation came into 2001 only. So prior to 23rd July, the system was that we will have a fair market value of property or the circle rate or what we call as the stamp duty value. And any price lower or any price lower of these two will be taken as the base price. And when you are selling the property between say 2001 and say 2024, any difference between the selling price and the base price, the capital gain will be calculated on the basis of 20% with indexation. That means your base price will factor inflation into consideration, and then accordingly you will arrive at. Now on 23rd July, when it was announced that 12.5% without indexation, then the problem was that what will happen to older properties. Now the clarity is what we are getting, that you have two options, 12.5% without indexation, 20% with indexation. For property bought between 2001 until 23rd, or rather I say property bought before 23rd July 2024, and if you are selling that, then you will have the two options, and lower of that taxation, you will have to pay that. That is one thing. The second thing is that if you are going into transaction for the property which has been bought after 23rd July 2024, there will be a flat rate, that is a 12.5% without indexation. So I hope that I have able to explain to you, Mr. Prashad, and if you have any other doubts, so in the next program you can ask me.
जी और दिल्ली से हमारे साथ बीरबल जुड़े हैं. बीरबल जी स्वागत है आपका शो में. सवाल पूछिए अपना. हेलो.
I think we've lost touch with Inspursh. Why don't we go ahead with the story from RBI?
जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों में कोर बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है. आज नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बैंकों से जमा और उधारी राशि से संबंधित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा. बैठक में उपस्थित रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है. उन्होंने कहा कि जमा और उधारी पर ब्याज दर विनियमित होते रहते हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकिंग नियम संशोधन ला रही है जिसका लंबे समय से इंतजार था.
ओके, वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन विद अस, केशव कुमार. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट द एफएम एंड आरबीआई गवर्नर सेड. केशव, वार्म वेलकम.
नमस्कार जी.
नमस्कार
सर. मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारी फादर की जो एफडी थी वो मैच्योर होने के बाद हमने वही एफडी 30 लाख करीब एक ही बैंक में ही हमने जमा करा दी है, सरकारी बैंक है. तो प्राइवेट में हमने सर्च किया, दूसरे में हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो क्या हम दूसरे प्राइवेट में जा सकते हैं? और उन्होंने हमें एक स्कीम बताई है कि आप इसको जीरो बैलेंस से भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस 10,000 लेते हैं. हमारे से जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलने को क्यों कह रहे हैं? और एक 2 लाख की स्कीम है कि उसमें आप इसमें जीरो बैलेंस से आपको पासबुक चेकबुक दे दी जाएगी. क्या हम प्राइवेट में विश्वास करें? क्या इसके बारे में थोड़ा हमारा जानकारी देंगे?
केशव जी, दो तीन चीजें आपके सवाल में जो है पहलू है. पहला तो कि आपने कहा कि एक फिक्स डिपॉजिट था, वो फिक्स डिपॉजिट आपने एक सरकारी बैंक में खुलवाया
जी,
जहां पे पहले था उसी बैंक में आपने दोबारा खुलवाया. तो अगर मैं आपके सवाल का मतलब समझूं, आपने रिन्यू नहीं कराया बल्कि फ्रेश खुलवाया है. तो अगर फ्रेश खुलवाया तो जो खाता खोलने की तारीख होगी और उस तारीख को जो ब्याज होगा वो आपको दिया जाएगा, और जो सीनियर सिटीजन के फायदे होते हैं वो आपको मिलेंगे अगर आपके पिताजी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं. दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जीरो बैलेंस वाला, देखिए कई तरह के खाते हैं जो सरकारी और निजी बैंक आपको मुहैया कराते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है या बेसिक सेविंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, ऐसी कुछ जमा योजनाएं हैं जहां पर जीरो बैलेंस में कर सकते हैं। लेकिन वो याद रखिए वो सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है, वो फिक्स डिपॉजिट से नहीं है। तो आपको ये तय करना है कि आपने सेविंग अकाउंट खुलवाना है या फिक्स डिपॉजिट खुलवाना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको पता है कि आपके लिए एक तरीके से आप जब चाहें, जिसको हम लोग कहते हैं ना डिमांड डिपॉजिट है, कि आप जब चाहें आप जाएंगे बैंक के पास पैसा जमा कर सकते हैं, बैंक से आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप टर्म डिपॉजिट या मियादी जमा जिसको हम कहते हैं, तो एक निश्चित मियाद के लिए आप पैसा जमा करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप खोलना क्या चाहते हैं। तीसरा, क्या हम भरोसा करें? देखिए आज के दिन में शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं, चाहे हम 12 सरकारी बैंकों की बात करें या फिर हम 22 लगभग जो है हमारे निजी बैंकों की बात करें, विदेशी बैंकों की बात करें, इन सभी बैंकों का आरबीआई की तरफ से नियमन होता है और अभी के समय में जो स्ट्रेस टेस्ट आया है उनमें इन बैंकों को लेकर के कोई परेशानी नहीं है।
शिशिर जी, इनके प्रश्न से एक चीज निकल करके आई कि इन्होंने एक बड़े अमाउंट की एफडी एक ही साथ की हुई है, तो उसको क्या बेहतर है कि तोड़ के लगाया जाए या फिर पूरा अमाउंट इकट्ठा ही लगाया जाए?
नहीं, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक जगह पे ही रखते हैं और पूरी रकम रखते हैं और किसी, मान लीजिए आपने सरकारी बैंक में किया है, देखिए आज के दिन में भगवान न करे ऐसी परिस्थिति बने, अगर कोई बैंक डूबता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत आपको 5 लाख रुपए तक आपको मिलते हैं
जी।
अब इसमें वो अगर आशंका अगर आप ले लें तो आप उस 30 लाख को 6 जगह पे कर दें 5-5 लाख के, ताकि आपको ऐसी किसी भी आशंका से निपटने में मिले। लेकिन ये बहुत ही, जिसको कहते हैं बहुत ही दूर की बात होगी कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अभी एक जगह पे रखें और निजी बैंक पे भी भरोसा करें, वो बुरे नहीं है
जी।
From Kolkata, we are joined in by Atanu Saha. Atanu, a warm welcome.
Good evening, sir. Good evening to everybody.
Yeah.
My respective sir. Sir, one question, sir, that option pension scheme, which we observe it is now popular, pension option as a optional way. Sir, is it is influencing our capital market near future? Thank you, sir.
It all depends upon that what kind of investment opportunities we are providing to any pension fund. See, all the pension schemes are supposed to put money in the market or in the bond market. So it all depends upon them. And I think the pension, the good thing with the pension is that they are considered as a very safe one. So I don't think there is any problem at this moment with the pension funds.
Moving on, the S&P 500 ended higher on Friday and was little changed for the week after regaining almost all of its losses since Monday's steep dive that was prompted by fears of a recession and unwinding of a global yen-funded carry trade. The technology sector gave the index its biggest boost on Friday. Monday's big decline followed a sharp sell-off last week as a weaker-than-expected July jobs report sparked recession fears and investors unwound currency carry trade positions involving the Japanese yen. The Dow Jones Industrial Average rose 0.13%, the S&P 500 gained 0.47%, and the Nasdaq Composite added 0.51%. For the week, the S&P 500 was down 0.05%, the Dow was down 0.6%, and the Nasdaq was down 0.2%. Shishir, the Fed is now expected to cut rates at its next policy meeting on September 17 and 18. 25 or 50 basis point, what is it going to be like?
This is a very risky guess at this moment. But what we expect that there will be a tranches of cut, not just one cut. So it could be, say, 5 tranches of 25 basis point each, taking to 125 basis point, or 6 tranches of 25 basis point each. Because see, one, the problem is that if you cut by 50 basis point, then it will have a very, very knee-jerk reaction.
जी, और बस्ती यूपी से हमारे साथ संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए।
हाँ जी, गुड इवनिंग सर।
जी
गुड इवनिंग
सर, मुझे ये जानना है कि मान लीजिए किसी के पास और कोई इनकम नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट से उसने कुछ इनकम कर लिया है और लॉन्ग टर्म में, तो क्या उसे उसका टैक्स उसको भरना पड़ेगा जबकि वो कोई भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता है?
देखिए संतोष जी, एक चीज क्या होता है ना कि जब आप कैपिटल गेन, जिसको आप पूंजीगत मुनाफा कहते हैं, जो शेयर बाजार या जमीन जायदाद या सोना वगैरह से आता है, अब आप रिटर्न आप तो जरूर फाइल करिएगा क्योंकि आपने अब शेयर बाजार के निवेशक है तो आपका पैन नंबर तो है ही आपके पास, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता है कि आप शेयर बाजार से कितना कमा रहे हैं। अब वो है कि आप जब कमाएंगे और आप जब दाखिल करेंगे, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम में हो या न्यू टैक्स रिजीम में हो, न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो लगभग 7.25 लाख रुपए तक की इनकम जो होती है जिसपे आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो मेरी सलाह यह है कि आप रिटर्न जरूर फाइल करिए, आपका प्रीफाइल्ड रिटर्न आएगा तो प्रीफाइल्ड रिटर्न से आपको पता चल जाएगा कि आपकी लायबिलिटी बनती है कि नहीं। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी यही कह सकता हूं कि आप 7.25 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में है तो आपको टैक्स नहीं देना।
फ्रॉम जयपुर वी आर जॉइंड इन बाय जितेंद्र, अ वार्म वेलकम जितेंद्र।
हाँ सर, क्या नाम है कि अभी जो बांग्लादेश में ऐसा हुआ है तो क्या अपना कपड़ा का जो व्यवसाय है क्या कुछ बढ़ सकता है क्या?
जितेंद्र जी, आज ये चर्चा भी हुई, इसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं, खासतौर पे जो भारतीय कारोबारी जिन्होंने पैसा लगा रखा है बांग्लादेश में उनको लेकर के एक चिंता है। और ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अनिश्चितता या उतार चढ़ाव की वजह से भारत को बाजार में अपने पैर जमाने में, कदम जमाने में मदद मिलेगी। देखिए अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना कि इससे इनको ये फायदा हो जाएगा, उससे उनको ये फायदा हो जाएगा। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और अगर आप गौर करेंगे खबरों पर तो बांग्लादेश में परिस्थितियां काफी तेजी से बदली और जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तो थोड़ा इंतजार करिए।
Oil prices settled higher on Friday and notched over 3.5% in weekly gains as positive economic data and signals from Fed policymakers that they could cut interest rates as early as September eased demand concerns, while fears of a widening Middle East conflict continue to raise supply risks. Brent crude futures settled 50 cents up or 0.6% to $79.66 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude futures rose 65 cents to or 0.9% to $76.84. Brent gained more than 3.5% in the week, while WTI rose more than 4%. What's the future of oil according to you?
As of now, the geopolitical situation is very volatile. I mean, the kind of situation we are seeing that on one particular corner we are finding that there is some solution, on the suddenly we find that there is a problem in the another corner of the world. So at this moment it's going to be volatile, and it's not a good news for India, considering that if it goes beyond say 90 or something like that, then we have to worry.
So we go back to the story that we read out a while back about the CBD and the FM saying that in fact, she's stressing the fact that the need for the banks is to focus on their core banking. Now, where is the need for the FM to remind the banks on this?
Okay. Since I was in that press conference, so the exact word was that more focus to core banking business. Mm-hmm. It's not just focus, more focus on that. Now, why is he using the word more focus? So if you go to the Monetary Policy Committee briefing, where the RBI Governor Shaktikanta Das, he said that the banks, the rate of growth for credit is higher than the rate of growth of deposit. So in that situation, if you are putting more and more money in some other areas, or if you are not able to attract the deposit, then there will be asset liability mismatch. So any kind of asset liability mismatch is going to affect the banking system balance sheet. So that is why she is saying that focus on your core banking business, which is what? Taking deposit, giving loan.
Correct.
So just focus on that. Use the innovative product. Why we need the innovative product? You know, most of the loans are available through the digital means. Mm. But when we talk about the deposits, you just need to go to the banks and open an account. So that is one problem.
Okay. Very quickly, what's your outlook for the coming week?
Hopefully the market will be in a slightly better situation.
Okay. No volatility?
I think volatility is a part of the market. You cannot say that there will be no volatility. I just said that it will be slightly better.
Okay.
धन्यवाद शशर जी, और कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद। और अंत में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख।
Thank you, Shishir, for being with us. And before we close the headlines, indices break 2-week outperformance and ends lower during the week. Sensex declined 1,276 points. Nifty 50 shed 1.4%. In the U.S., tech sector gives the market the biggest boost on Friday, and oil prices settled higher on Friday, notches over 3.5%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.